जंग करने का हक जो है वो एक बाकायदा मुनज़्ज़म रियासत को है, हुकूमत को है, लेकिन कुछ ऐसी कौमें हैं कि जिनके पास हुकूमत मयसर नहीं है लेकिन जुल्म उनके उनके ऊपर हो रहा है, तो क्या उनको ये हक हासिल नहीं है कि वो खुद उठ खड़े हों, सियासी तौर पर जद्दोजहद करें, या कभी उठ खड़े हों और इस तरह से एजिटेशन भी अगर कर सकते हों तो करें?
देखिए, बात यह है कि आप अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया, हमें कुरान ने क्या तालीम दी है? आप उठ खड़े हों, ये उठ खड़े होने का जो फैसला है ये कौन करेगा? एक बाकायदा मुनज़्ज़म हुकूमत में तो हम कुछ लोगों को मुंतखब करते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, वो ये फैसला करते हैं। आप पूरी तारीख का मुताला कर लें, इसमें मुख्तलिफ ग्रुप उठ खड़े होते हैं और ये फैसला करते हैं, फिर वो एक दूसरे के गले काटते हैं, फिर वो अपने इकतदार की जंग लड़ते हैं। कौन फैसला करेगा इस?
अगर वो पूरे एक ही ग्रोह के तौर पर उठ खड़े हों तो
कोई तारीख में मिसाल है इसकी? नामुमकिनात में से ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं उठा जाता। असल में
कायदे आजम की कयादत में उठे थे ना, कायदे आजम
सियासी जद्दोजहद हो रही थी
सही।
और माजरत के साथ सियासी जद्दोजहद में भी कायदे आजम को अक्सरियत की ताइद हासिल थी, सारी की सारी कौम नहीं उठ खड़ी हुई थी, वहां किसी फसाद का अंदेशा नहीं था। तो तमाम वो अकवाम जो ये समझती हैं कि उनके साथ उनके मुल्कों में जुल्म हो रहा है, उनको चाहिए सियासी जद्दोजहद का लाया अमल इख्तियार करें। सियासी जद्दोजहद का लाया अमल इख्तियार करने के नतीजे में आप अपनी कौम को बर्बाद नहीं करते, आप उनको तबाही के किनारे पर नहीं पहुंचा देते, आप लोगों के लिए तालीम के मौके बंद नहीं करते। आपको अंदाजा नहीं है इस बात का कि जब इस तरीके से हथियार उठाए जाते हैं तो इसमें कौमें किस तरह तबाह हो जाती हैं। इस वक्त अफगानिस्तान खंडर बन चुका है, फलस्तीन की पूरी कौम बर्बाद हो चुकी है, कश्मीर में जो कुछ हुआ है वो भी मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। तो ज़्यादा अच्छा तरीका यह है कि अंबिया के तरीके पर रहा जाए, और वो तरीका यही है कि आप लोगों को एजुकेट कीजिए, उनका शऊर बेहतर कीजिए, और अगर ज़माने ने आपको इसका मौका दिया तो सियासी जद्दोजहद कीजिए। ये बहुत सी इस्तलाहात और ताबीरात भी मेरी समझ में नहीं आती। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह इस्तिदादी हुकूमत है और वो कौमी हुकूमत है, तो आपके ख्याल में वहाँ के लोग आज़ाद हैं या गुलाम हैं? मसलन बहुत से मुल्कों में बादशाहत कायम है, इस्तिदादी बादशाहत, मैं आइनी बादशाहत की बात नहीं कर रहा हूँ, मौजूद है, वहाँ के लोगों के बारे में क्या ख्याल है?
वो उससे मुतमईन है तो कोई इशू नहीं है। जब
आपके ख्याल में सब लोग मुतमईन होते हैं?
नहीं,
उनको मालूम होता है कि अदम इत्मीनान के नतज क्या निकलेंगे, और अगर उसका इजहार भी कहीं हो जाए, यहाँ तक कि अगर आह भी निकल आई, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? अच्छा, इसी तरीके से जिन मुल्कों के अंदर जमहूरी निज़ाम कायम कर दिया गया है, जो वतन की बुनियाद पर नेशनल स्टेट्स कायम हो गई हैं, वहाँ आज़ादी और गुलामी का क्या सवाल है? अगर सूरत हाल यही है तो फिर मुझे बताइए कि जो लोग अमरीका की शरीयत ले रहे हैं जाके, वो वहाँ गुलामी इख्तियार कर रहे हैं या आज़ादी इख्तियार कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है बेशुमार सियासी मसाइल ऐसे हैं कि जिनका हमने कभी उस तरह जायजा भी नहीं लिया कि दुनिया कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई।
जनाब, अगर आपके इस इस्तदलाल को मान लिया जाए तो फिर तो इस्तबदादी हुकूमत के सामने मेरा खड़ा होना, खा मेरे अंदर दिलेरी है और मेरे दोस्तों में नहीं है, या मुझ में नहीं है और मेरे दोस्तों में है, तो फिर तो उनका खड़ा होना, आवाज़ उठाना या किसी भी सूरत उसके खिलाफ जद्दोजहद करना, वो तो सिरे से गलत करार पाएगा। और दूसरा यह कि खुद पाकिस्तान में हम जिस सियासी निज़ाम से गुजर रहे हैं या गुजरते रहे हैं, हम सब का इज्तमाई तजर्बा बताता है कि कभी हमारे यहाँ हुकूमत मुनज़्ज़म तो ज़रूर होती है लेकिन मुंतखब नहीं होती, और कभी मुंतखब होती है और शायद उतनी मुनज़्ज़म नहीं होती। तो जाहिर है जब मुनज़्ज़म हुकूमत हो तो क्या मेरे लिए ये काफ़ी दलील है कि चूँकि हुकूमत गैर मुंतखब है, मुस्तबिद है लेकिन मुनज़्ज़म है, इसलिए मैं इसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाऊं या कोई जद्दोजहद ना करूं?
आपको पूरा हक है आप आवाज़ उठाएं, आप में हिम्मत है तो आप ज़रूर तनकीद करें। अल्लाह ताला के पैगंबर ने यह बताया है कि बेहतरीन जहाद, अफजल तरीन जहाद ये है कि आप जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहें, आप उसके लिए सियासी जद्दोजहद के तरीके इख्तियार करें। यहाँ पर अंग्रेज़ों की इस्तिबदादी हुकूमत थी, उसके खिलाफ लोगों ने जद्दोजहद की, महात्मा गांधी ने की, बहुत से दूसरे लीडरों ने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने की। ज़माने और हालात के लिहाज से जद्दोजहद के तरीके बदल जाएंगे। जब आप बंदूक उठाते हैं उसके बड़े ख़तरनाक नतायज निकलते हैं, वो नतायज फ़लस्तीन में भी निकले हैं, वो कश्मीर में भी निकले हैं, वो कुर्दिस्तान में भी निकले हैं, वो और जगहों के ऊपर भी निकले हैं। तो जद्दोजहद की नफ़ी नहीं की जा रही, जद्दोजहद करने के लिए तरीके क्या इख्तियार किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर ईरान में एक इस्तिबदादी हुकूमत थी, वहाँ जद्दोजहद करने के लिए वहाँ की जो लीडरशिप थी, मजहबी लीडरशिप, वो बाहर निकल गई। उन्होंने दूसरे मुल्कों में बैठकर अपनी कौम को मुनज़्ज़म किया, मैसेज दिया, उनमें शऊर पैदा किया, उसके बाद सियासी तरीकों से एक तब्दीली आ गई। वहाँ कोई जंग नहीं हुई, कोई जदाल नहीं हुआ। तो सियासी तरीके भी दुनिया में अपनी तासीर साबित कर चुके हैं। आखिर एक ही तरीका क्यों होता है जद्दोजहद करने का, और वो ये है कि मैं एक जथा मुनज़्ज़म करूँ और उसके बाद 10 जथे और वजूद में आ जाएँ और फिर उनके दरमियान जंग व जदाल की नौबत पहुँच जाए। ये जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है क्या वो इबरत का सबक नहीं है हमारे लिए? वहाँ कौन लोग थे, किस जज्बे के साथ उठे, किस तरीके के यहाँ पर आवाज किए गए, कैसे लोगों को मोटिवेट किया गया और उसके बाद क्या हुआ? वही जथे थे जो काबुल के बाहर लड़ रहे थे। तो जब एक बार बंदूक जिद्दोजहद करने वालों के हाथ में आ जाती है तो फिर वो अपना रास्ता भी खुद तलाश करती है। तो इसलिए सियासी जिद्दोजहद का तरीका इख्तियार करना चाहिए। इसी वजह से अंबिया अलैहिस्सलाम ने कभी ये काम नहीं किया। आपको मालूम होना चाहिए कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की बेसत जब हुई है तो उस वक्त उनकी अपनी कौम दो रियासतों में बटी हुई थी। उनमें से एक रियासत में कठपुतली हुकूमत थी, यानी हुकूमत तो यहूद के पास ही थी लेकिन वो हुकूमत रोमियों के तहत थी। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से अंग्रेज़ों को आपने देखा कि वो बाज़ रियासतों को कंट्रोल करते थे। हिंदुस्तान में सैकड़ों की तादाद में रियासतें थीं, उनमें वो बराह रास्त हुकूमत नहीं करते थे बल्कि आम तौर पर अपना रेजिडेंट भेज देते थे और उसके जरिए से हुकूमत होती थी। तो आधे हिस्से में इस तरह हुकूमत हो रही थी और आधे हिस्से में बराह रास्त रूमी हुक्मरान थे। वो रूमी हुक्मरान पिलातुस था जिसने उनकी सजा का फैसला किया है। इस सब कुछ के बावजूद आप देखिए कि उन्होंने एक कदम भी इसके लिए नहीं उठाया। जो काम किया वही है कि अपनी कौम को बेदार किया जाए। जब कौमें जिंदा हो जाती हैं, उनमें शऊर पैदा हो जाता है, वो अपने हुकूक को समझ लेती हैं और अपने फ़राइज़ को भी समझ लेती हैं। आम तौर पर इस तरह के ताले आजमा लीडर कौमों को बर्बाद करके, मुल्कों को खंडर बना के फारिग हो जाते हैं और उनको हासिल क्या होता है? तारीख में उनका नाम हीरो के तौर पर दर्ज हो जाता है। मैं तजिया करके बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान में हमारी पूरी कौम को जंग आज़ादी से क्या नुकसान पहुँचे। लेकिन अगर आप देखिए तो भारत लोग हीरो हैं, वो बयान करते हैं उसको। ये खुद हिंदुस्तान की तारीख हमें बताती है कि वो लोग जो उलमा में से भी पहले जिहाद कर रहे थे, आप हाफिज़ जामिन के जिहाद को देख लीजिए, उससे पहले सैयद अहमद शहीद की जद्दोजहद को देखें, खुद उन उलमा ने ये फैसला किया कि अब हम सियासी जद्दोजहद करेंगे। तो ज़माने ने ये सबक दिया है कि इस तरह की जद्दोजहद सिर्फ लोगों को मरवाने का ज़रिया बनती है और कौमों को बर्बाद करने का ज़रिया बनती है। मैं मुसलमानों की तारीख को जब इब्तदा में देखता हूँ तो कोई बनू उमैया के ज़माने में जब बादशाहत कायम हो गई तो 226 के करीब इकदाम हुए हैं जिनमें जंगी इकदाम किया गया। उसके नतीजे में सालहीन की जमातों की जमातें मार दी गई, यहाँ तक कि फिर अहले इलम का कमोबेश इजमा हो गया कि हम सियासी जद्दोजहद की बजाय, यानी इस तरह की अस्करी जद्दोजहद की बजाय सियासी जद्दोजहद का तरीका इख्तियार करेंगे। हुक्मरानों पर तनकीद करेंगे, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, बेहतर लोगों को लाने की सही करेंगे। उसमें कितनी कामयाबी हुई, कितनी नाकामी हुई, कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार असल में तारीखी अवामिल पर होता है। तारीखी अवामिल जब आपके हक में चले जाते हैं तो जद्दोजहद कामयाब हो जाती है। मैं पूरी दयानतदारी से ये समझता हूँ कि दूसरी जंग अजीम ना होती तो शायद अभी बरतानवी सल्तनत 50 साल और निकाल जाती। तो इसलिए तारीखी अवामिल फैसला करते हैं कि अब आपने कहाँ पर ज़र्ब लगानी है। वो मौका होता है जहाँ को अच्छा लीडर आगे बढ़ के एक नाम कर डालता है, लेकिन ये जद्दोजहद जिसमें तलवारें पकड़ी जाती हैं, इसका नतीजा पूरी इंसानी तारीख में तबाही, बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं निकलता।